ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பூர்வ மீமாசா கி பூர்வ பகவான் வாசகர் நே உபனிஷது பார்த்திகர் லிக்கோ தோ குமார பட்ட நே கா மேரே பாக்ய மே நீ யசோ லேனே கே ஆப்கி பாஷ்ய கே பூர்வ வார்த்திகர் லிக்கனே கே லிய मैं अभी प्राचीन में बैठ गया और आगे नहीं कर पाऊंगा. भगवान ने कहा था शंकराचार्य ने, मैं आपको स्वतः कर देता हूं योग के माध्यम से, आप लिखो. फिर उन्होंने अस्वीकार किया, नहीं प्राचीन के लिए संकल्प कर जो बैठ गया नहीं करूंगा, मेरा शिष्य करके मंडन मिश्र के पास भेजा. तो ही प्राचीन किया था ईश्वर नहीं मानते करके, किन्तु उनके मत में ईश्वर. और आगे वार्तिक में लिखा है उन्होंने, इत्याह नास्तिक निराकरिष्णुर आत्मास्तित्व भाष्य कृदत्र युक्त्या दृढ़त्वमेतद् विशेष्य बोध प्रयाति वेदांत निषेवणेन. वेदांत श्रवण करने से दृढ़ ज्ञान होगा, कुमारल भट्ट ने कहा है तो मीमांसक, किन्तु वेदांत को सम्मान देकर कहते हैं. इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु, हमारे भाष्यकार ने सावर स्वामी ने ऐसा कहा नास्तिकों को निराकरण करने के लिए. क्या कहा? आत्मा अस्तित्वम, आत्मा एक है भाष्यकृत अत्र युक्तिया, युक्ति से कहा कि आत्मा है, क्योंकि नास्तिक कहते आत्मा नाम कोई पदार्थ नहीं, तो इसलिए आत्मा अस्तित्व कह दिया. और ये आत्मा का ज्ञान होगा दृढ़त्व में तद विशेष बोध प्रयाति, वेदांत श्रवण करने से दृढ़ ज्ञान होगा उन्होंने कहा. अर्थात वो सिद्धांत सब जानते हैं, किन्तु किस कर्म को प्राधान्य करने के लिए ईश्वर नहीं माने. तो ऐसे कुछ लोग उनके दर्शन को लेकर के, सामान्य लोग प्रसिद्धि को लेकर के ईश्वर का भी खंडन कर देते हैं, किंतु ऐसे कहते ऐसा नहीं, ईश्वर व्यावहारिक है, जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले है, कृपा करने वाले अनुग्रह करने वाले है, फल देते. अभी अभी सुन रहा था फलम अतः उपपत्ति, फलम अतः परमात्मा ही फल देते है, परमात्मा ही फल दे सकते है. आप कहीं भी कुछ करते सत्कर्म, अतः कोई निषिद्ध कर्म करता है, फल देने वाले परमात्मा है, निमित्त तो कर्म है. परमात्मा फल देगा तो आपके कर्म का फल देंगे. कहीं भी किसको प्रणाम किया, किसको कोई तिरस्कार करता है, महापुरुष को दान किया, कहीं उपकार कर दिया, कुछ उपवास कर लिया, फल कौन देगा? जो दे सकता है समर्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान. मन में किसके मन में क्या है, किसने क्या कर्म किया, पुण्य अथवा पाप छिपा करके, पाप ही तो छिपा कर करते हैं, पुण्य भी कुछ सत्कर्म करने वाले पुण्य भी छिपा कर करते हैं. है तो पुण्य को छिपाना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं क्या ऐसे क्या करके. तो फल परमात्मा देते हैं, और जो कामना से करता है कामनाजन्य फल प्राप्त करता है. निष्काम कर्म करने से सारे कर्म उपासना परमात्मा प्राप्ति का साधन है. इसे कर्म करते समय, उपासना करते समय किसी की इच्छा नहीं रह करके, केवल यही इच्छा रखे परमात्मा दर्शन की इच्छा, तो ही श्रेष्ठ भक्ति है. भक्ति तो तभी है यदि और कुछ नहीं चाहे. और कुछ चाहे तो मैं बताया था, भक्ति फल की भक्त नहीं बने, ईश्वर का भक्त बने. जो फल चाहेगा वो किसका भक्त होगा? फल का भक्त, ईश्वर का भक्त नहीं. ईश्वर के भक्त फल नहीं चाहेगा. कोई पेड़ लगाया, फल नहीं देते पेड़ को काट दिया, तो क्या चाहता था? फल का. फल नहीं देते पेड़ क्या काम का है? पेड़ को काट दिया. अजय पेड़ के भक्त होगा, वृक्ष का भक्त है, फल नहीं दे तो वृक्ष का भक्त तो वृक्ष को सेवन करेगा. इसी प्रकार ईश्वर का भक्त ईश्वर को ही चाहे, और कुछ चाहता है तो ईश्वर का भक्त नहीं. इसे हमेशा सोचे मैं ईश्वर का भक्त हूं या फल का भक्त हूं, विचार कर देखो. कभी फल की इच्छा है उस समझ ईश्वर को मैं नहीं चाहता हूं. यदि ईश्वर को चाहता हूं तो फल इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए. अरे फल इच्छा छोड़ करके सत्कर्म करे तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है. पहले प्रार्थना करते ब्रह्म का निराकरण, परमात्मा का निराकरण मैं नहीं करूं. ब्रह्म पर ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा है. चतुश्लोकी भागवत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासन आत्मन अन्वय व्यतिरेक अभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा. यत् सर्वत्र स्यात् सर्वदा स्याद, वही परमात्मा, उसको ही जानना है. जो तत्व जिज्ञासु है मुमुक्षु है इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं. जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो वही परमात्मा है, उसको जानना चाहिए। भगवान ने कहा ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनानिमत् परम ब्रह्म न सत्त नाश दुच्यते। इतना ही जानना है और ज्यादा नहीं। बहुत जानने की इच्छा करते हैं, बहुत जानने का अभिमान रखते हैं, कुछ अभिमान व्यर्थ है। यदि एक परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, सब ज्ञान व्यर्थ है। और एक परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया और अज्ञात वस्तु कोई नहीं है, किसको जानने की आवश्यकता नहीं, ये इसमें आ जाएगा शांतिग्रह में। कहे ब्रह्म का निराकरण नहीं करो और परब्रह्म भी मेरा निराकरण नहीं करे, अर्थात परब्रह्म मेरा स्वीकार करे। निराकरण तो नहीं चाहिए, कोई इसको ध्यान नहीं चाहिए, तो परब्रह्म हमारा परमात्मा किसका निराकरण नहीं करते हैं। तो ये भक्त कहता है परमात्मा मेरा निराकरण नहीं करे और अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु, हमारा परस्पर निराकरण नहीं हो, मैं समर्पित होता हूँ। जो कोई समर्पण दान करते हैं, समर्पण करते अभिमान नहीं रखते, कृपा करके हमको स्वीकार कीजिए, मैं दान ग्रहण कर देता हूँ तो ग्रहण कीजिए। कोई दान देते हैं तो इसके कृपा करके स्वीकार कीजिए, देते समय प्रार्थना करके देना होता है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम नहीं, श्रद्धा कृपा करके। तो इसे कहते हम समर्पित है, परमात्मा हमें स्वीकार करे, कृपा करे। जो कृपा स्वीकार करते ही अनिराकरण नहीं हो, कभी भी प्रमाद से भी परमात्मा का निराकरण अनाधार नहीं, शब्द से भी नहीं। और जो निराकरण निषेध करने वाले उनके शब्द भी सुनना नहीं चाहिए नास्तिक, ऐसे जो कहेंगे ये नहीं करो ऐसा नहीं करो, नहीं। परमात्मा व्यवहारिक भेद है, परमात्मा फल देते है, उनकी कृपा से ही शास्त्र श्रवण में प्रवृत्ति होती, फल प्राप्ति में भी, निर्विघ्न ज्ञान होने में भी, अंतिम तक परमात्मा के अनुग्रह के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। बहु जन्म में कर्म उपासना करने के बाद ही जिज्ञासा होती, तब वेदांत श्रवण करने की इच्छा होती है। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राण द्वित्राण यदि जायते। अद्वैत जानने की श्रवण करने की जो इच्छा है, ईश्वर अनुग्रहात ईश्वर की कृपा से ही अद्वैत वासना होती है। जब कहीं वेदांत श्रवण करने से रुचि होती है, कुछ समझने में आता है, तब समझना ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, ईश्वर अनुग्रहात ऐसा। जब वासना श्रवण करने की इच्छा हो, बहुत में नहीं होती है, बहुत लोग श्रवण नहीं कर पाते हैं, बहुत है, बहुत यहां बहुत नहीं देखना, बहुत लोग है, बहुत लोग नहीं, कथा नाचना कूदना में तक आग्रह होंगे, वेदांत के नाम से दूर हट जाएंगे। लोग डरा भी देते हैं, अरे वेदांत श्रवण करेंगे तो ब्रह्म राखी बन जाओगे, भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्या क्या कह करके भगवान दे कहते भक्ति नष्ट हो जाएगी, डरा देते हैं। भक्ति क्या है उसके विषय प्रसंग पर कभी बताएंगे। भक्ति वस्तुतः बढ़ती है, नष्ट नहीं। परमात्मा को आप चाहते और कुछ नहीं चाहते तभी भक्ति है, जो कुछ चाहता है वो भक्ति नहीं करता, भक्त नहीं है। बस भाषा भक्त तो है जब सब काम निवृत्ति हो जाए, जो स्थित प्रज्ञा से क्या भाषा चतुर्थ भूमिका में कही गई, वासना निवृत्ति हो जाए तो वास्तव तो भक्त हो ही है, किसी की इच्छा नहीं हो। विचार कर देखे भक्ति कितने हम करते और कितने इच्छा है, यदि वासना रहित तो हो गया वही वास्तव तो भक्त है बस। तो ये उपनिषद में वेदांत श्रवण के समय भी ये उपासना कर्म है, पहले प्रार्थना करते हैं, तदात्मने निरते उसे परमात्मा में निरंतर श्रवण मनन करते समय ये उपनिषदसु धर्मास्ते मयि सन्तु। उपनिषद में प्रतिपादित जो धर्म श्रम दम आदि अमानित मदमित्व आदि स्मृति में जो साधन आवश्यक है साधक में, ते मयि सन्तु मुझे मेरे में हो, प्राप्त करने की इच्छा है फल और साधना नहीं रहे सीधा फल मिल जाएगा नहीं हो सकता है, साधना होनी चाहिए। इसलिए पहले जो उपनिषद है समदमादि अमानित्वादि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता साधन आवश्यक है वो मेरे में हो, ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति 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 करके तीन बार शांति का नाम लेते हैं, आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिक तीन प्रकार ताप त्रय निवृत्ति के लिए, विघ्न निवृत्ति के लिए। शांति पाठ वेदांत श्रवण का अंग होता है, वेदांत श्रवण करने के पहले शांति पाठ करके वेदांत श्रवण होता है। जो शांति पाठ में प्रमाद हो, शांति पाठ नहीं करे तो विघ्न निवृत्ति पूर्वक वेदांत श्रवण वेदांत फल प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए प्रति रोज साध सब लोग प्रारंभ में नहीं आ पाते हैं, किंतु एक ये ज्ञान यज्ञ है। यह जो ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ रूप से उसका अनुष्ठान करें, व्रत रूप से फल परमात्मा देंगे। ये इसके लिए ये समझे एक हुआ तो भागवत ज्ञान यज्ञ, ये प्रस्थानांतर ज्ञान यज्ञ, वही महापुरुष जिनके संकल्प से यह अध्यात्म विद्या भवन यहाँ प्रारंभ हुआ, उनके संकल्प से उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है यह ज्ञान यज्ञ। जिस कैलाशाश्रम में के पंचम पीठाधीश्वर थे ऋषिकेश में, उसी कैलाशाश्रम में वार्षिक महोत्सव में प्रतिवर्ष ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान होता है, प्रस्थानांतर ज्ञान यज्ञ उसी परंपरा से प्रारंभ हुआ था। तो ये ज्ञान यज्ञ यज्ञ रूप से करे, श्रवण करे, प्रारंभ से आरंभ करके शांति पाठ के साथ, जो पाठ नहीं करे तो कम से कम श्रवण करे बैठे उपस्थित हो अंतिम तक, ऐसे रोज करे तो लाभ होता है। और क्रम से बताते हैं, उपनिषद में भी क्रम से बताते, आगे आगे सीढ़ी में चढ़ा करके पहुंचाते हैं ऊपर पहुंचाने के लिए। उसी में खाली कोई सामान्य रूप से चले तो ऊपर पहुंच जाएगा, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं तो ज्यादा धक्का देकर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, आराम से आप आगे गए पीछे चलते रहो, धीरे धीरे भी चलो तो आगे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग आगे दूसरे को उठा के आगे बढ़ जाते हैं, वो कोई आवश्यकता नहीं, और बिल्कुल बैठना नहीं, चलते रहते धीरे धीरे बीच में प्रवाह के बीच में रह गया तो पहुंच जाता है। ये श्रुति है, माता पिता से भी हितकारिणी है, परमात्मा तत्व को साक्षात्कार कराने के लिए किस प्रकार लेकर वहां पहुंचाना है, इसे पहले उपासना कहेंगे। शांति विघ्न निवृत्ति के लिए परमात्मा की प्रार्थना आवश्यक है। शांति पाठ के समय भक्ति पूर्वक भी शांति पाठ करें, परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा की कृपा के बिना आगे प्रवृत्ति नहीं होती है, ये आवश्यक है। इसे तो कहा गया यावजीवम त्रयो वंत्या वेदांत गुरु ईश्वर, वेदांत गुरु ईश्वर, जब तक तो जीवन है तब तक उनकी वंदना करे। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आवश्यक ही है, आगे कृतज्ञता निवृत्ति के लिए उसका ही उसके अनुवर्तन अनुवृत्ति कहते हैं। ये नहीं सोता है कि ज्ञान हो गया और क्यों ईश्वर को मैं पूजा ईश्वर की पूजा करूं, क्यों गुरु को नमस्कार करूं, ये सब नहीं होता है, तो अभिमान में होता है, अज्ञानी करता है। ज्ञान होने के बाद अभिमान का स्थान ही नहीं, जैसे चलता ऐसे चलता रहेगा। कोई ज्ञान हो जाने में कोई शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाएगा ऐसे नहीं है। कोई यदि मांग कर क्षेत्र से रोटी खाता है, भिक्षा करता है, ज्ञान हो जाने पर क्या भिक्षाटन करने जाएगा या नहीं जाएगा? भिक्षाटन करेगा, जैसे वो नहीं सोचेगा ज्ञान हो गया मैं बढ़ जाऊंगा, वो कोई बात नहीं ना। बहुत लोग उसके पास जाकर पूजा करनी चाहिए, लोगों कैसे पता चला किसको ज्ञान हो गया जाकर पूजा करेंगे? खाली बहुत लोग जिसके पास पहुंच गए, बहुत लोग जिसकी पूजा करते हैं वो ज्ञानी है, ये प्रमाण है क्या? नहीं, ये कुछ नहीं, चाहे तो क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे ज्ञानी। ये सब बहुत लोग जाने के नहीं है, जो ज्ञानी है वो नहीं चाहता कि बहुत लोग आ जाए, उससे कुछ अधिक क्या नहीं है, आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं, नहीं आए तो कोई नहीं परवाह नहीं, कुछ नहीं आनंद है। तो ये स्वरूप प्राप्ति के लिए जिस क्रम से प्रारंभ उपनिषद में, इस क्रम को देखे, ये कुछ उपासना पहले कहेंगे। ये उपासना है श्रौत उपासना, एक होता है स्मार्त, स्मृति में जो उपासना कही जाती है स्मार्त, श्रुति में जो कहती है उसका नाम श्रौत। श्रौत उपासना का अभी थोड़ा बाहुल्यता उसकी नहीं है, कम है, बहुत कम है। स्मार्त उपासना, स्मार्त उपासना भी कम होता है, कम तो नहीं है, ठीक चल रही है, उसे भी शास्त्रीय मत के अनुसार कम होता है, वो अलग है। तो उसकी अपेक्षा ये उपासना अधिक उत्कृष्ट है, श्रौत उपासना। श्रौत उपासना करने के लिए कुछ वेद का श्रवण, उपनिषद श्रवण करके करना होता है। श्रवण करने से ज्ञान होगा, श्रवण बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उपासना नहीं कर पाते, उपासना लोक में प्रसिद्ध नहीं है। बहुत लोग ये उपनिषद वेद अध्ययन जैसे पहले था, गुरुकुल में बास करके 25 वर्ष तक वेद अध्ययन, वो परंपरा आजकल लुप्त प्राय, जो पढ़ते हैं जानते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण, यदि कोई पढ़ते हैं नहीं तो मालूम नहीं है, तो अच्छे ब्राह्मण भी जो आते हैं वो भी इसको नहीं बता पाएंगे, विद्वान लोग भी ये उपासना क्या नहीं बता पाएंगे। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो आचार्य पढ़ते आजकल उनके पाठ्यक्रम में पूरी नहीं है, इसे पूरा उपनिषद का ज्ञान उनको नहीं होता है। और कहीं कहीं कोई कोई पढ़ाते हैं, छांदोग्य का षष्ठ अध्याय पढ़ाएंगे, बृहदारण्यक कोई अध्याय पढ़ा देंगे, ये आचार्य के पक्षाय में पूरी नहीं है, पूरा नहीं होने से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसे इसके ऊपर ज्ञान कम लोग रहता है। अब बहुत बड़े होने के कारण कभी इसके ऊपर प्रवचन ही कोई नहीं करेंगे, छोटे छोटे उपनिषद पर ऊपर करेंगे, ये बड़े और पहले ही उपासना है। अच्छा उपासना इसलिए मैं कहता हूं, ये उपासना से अलग उपासना करने की आवश्यकता नहीं, इसको श्रवण करे जिस क्रम से कहा गया बैठकर सुने तो यही उपासना हो जाती है, इसी में इतनी शक्ति है, उसी क्रम से चिंतन करें, आपको अनुभव होगा, इसी क्रम से चिंतन करें, श्रवण करें तो उपासना यही हो जाती है। उसके बाद कभी थोड़ा श्रवण क्या मालूम है, कभी समय मिला देखा सुना तो आपकी वो श्रवण करते करते उपासना हो जाती है, ये विशेष उपासना है। ये उपासना सामान्य उपासना नहीं, अन्य उपासना जिस प्रकार आपको सामग्री लेकर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, करनी चाहिए सामग्री लेकर के पूजा करते हैं। कभी जिसके पास सामग्री नहीं वो क्या करेगा, मानस पूजा प्रसिद्ध है, अरे मानस पूजा कभी करो, कोई सामग्री नहीं बैठ करके अभ्यास करो, एक घंटा दो घंटा भी आप आराम से परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, अपनी प्रक्रिया जिस प्रकार जो करें। यदि कोई पूजा अभिषेक आदि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं, बैठ कर चिंतन करो, गंध सुगंध है तो बहुत सुगंध चंदन घिस करके इतने चंदन लेकर लेपन करो, गंगा जल अभिषेक करना है तो करते रहो, 15 मिनट तक अभिषेक करते रहो, दुग्ध से अभिषेक करना है मन से बैठकर, हाथ पर हिलना नहीं, मन से बैठकर ही चिंतन करो। जैसे मनोराज्य करते करते क्या क्या चिंतन करते, सब लोग बैठकर चिंतन करते, फालतू चिंतन व्यर्थ चिंतन करते हैं, और केस केस में कोई सिखाना नहीं पड़ता है, केवल इसको फालतू चिंतन छोड़ करके परमात्मा की मैं पूजा कर रहा हूं, परमात्मा के सामने बैठा हूं, गंगा जल चढ़ाओ, दुग्ध से अभिषेक करो, पंचामृत अभिषेक करो, घी मधु अभिषेक करते रहो, फिर जल जैसे साफ करो, चंदन लगाओ, पुष्प उसमें कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं, जितने बड़े बड़े दुगंध पुष्प चढ़ाते जाओ, बहुत कमल पुष्प चढ़ाते जाओ, पूरा ऐसे पुष्प जो बहुत देर तक जो पुष्प सुगंध पुष्प आपको मालूम है उसके ऊपर चढ़ाते जाओ, इस पर गंध चंदन हुआ पुष्प धूप दीप नैवेद्य भी भोग लगाओ, ऐसे चिंतन करो, प्रणाम करते प्रणाम अच्छी तरह से, साष्टांग प्रणाम करने के उठने के झुकने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मन से करने के लिए कुछ नहीं, किन्तु मन से लाए लगातार ये चिंतन चले परमात्मा से तृप्त होते हैं, ये उपासना से परमात्मा दर्शन दे देते हैं, मानस पूजा का फल बहुत है। इसी प्रकार ये चौथ उपासना में ऐसे चिंतन करते है, ये विलक्षण उपासना है, ये उपासना जिस जैसे बताएंगे, सामान्य लोग कहेंगे ये सब क्या है, कुछ वेदांत बनने वाले हमको तो वेदांत चाहिए, उपासना क्या होगा, किन्तु योग्यता नहीं है, नहीं होगा, खेत में यदि शक्ति नहीं है, खोदाई नहीं करके कुछ नहीं किया, बीज नहीं डाला, अर्थात खाली बीज डाल दिया तो क्या फल मिलेगा, पत्थर में उसर्भ में पर क्षेत्र को जमीन को ठीक करना पड़ता है, क्षेत्र पात्रता पहले पात्र हो, किसी पात्र में डाना है कोई पदार्थ ना, पात्र पहले योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के लिए चाहिए ऐसे सब साधन चतुष्टय, जब विवेक वैराग्य समाधि सब संपत्ति मुमुक्षुत्व है, थोड़े थोड़े तो होता है, पूरा पूरा हो जाए इतने बड़ा कठिन है, किंतु वो भी श्रवण करते करते वो भी होता है, इसलिए आवश्यक है कुछ उपासना भी साथ साथ करनी चाहिए। इसलिए वेदांत उपदेश करने वाले भी हमारे पास आते ब्रह्मचारी लोग, हम उनको पहले द्वैत मंत्र उपासना करने के लिए कहते हैं, गायत्री उपासना करो, इष्ट देवता की उपासना करो, वेदांत श्रवण करो, पढ़ाई करो, उसके बाद अद्वैत उपासना अद्वैत ज्ञान के लिए संन्यास संस्कार कराते हैं। तो संन्यास होने के बाद भी कुछ कर्म उपासना वेदांत श्रवण करने के लिए उसके साथ साथ चलता है, तो उपासना की आवश्यकता है, और जो उपासना आप करते हैं उसको करना है, किंतु उसके साथ साथ इसमें जैसे उपासना कहेंगे वो थोड़े उसका भी चिंतन करें, ऐसे थोड़ा चिंतन करने से स्वयं अनुभव करेंगे इससे कितने लाभ होता है, एकाग्रता कैसे होती, अभी लाभ एक दिन दो दिन में नहीं, धीरे धीरे चलते चलते ऊपर पहुंचे तो पता चला हम कहाँ पहुंचे, नहीं तो एक दिन दो दिन कहीं कहाँ क्या हमको कहाँ पहुंचे, हम तो जाते तो ही ये पहुंचाने का नहीं, शरीर को नहीं पहुंचाने का, मन पहुंचेगा और पहुंचना थोड़ा आगे जाने पर पता चलता है। बहुत दूर चलना है, बहुत थोड़ी देर जाने के बाद देखते कहाँ है पहाड़, तो बहुत आगे, आगे तो है किंतु कुछ आप आए, फिर दूसरे दिन चलो आगे देखते पीछे सोचे कितने दिन आ गए, इतने दिन आगे आए तो इतने तक कम हुआ, फिर आगे चलना पड़ेगा, तो चलने पर फिर लक्ष्य प्राप्ति होती, आगे पता चलता है हम कितने दूर आए। यह पहले ये समय आठ अध्याय है, इसको अष्टाध्यायी भी कहते हैं। पाणिनि महर्षि ने एक अष्टाध्यायी की रचना की, ये सूत्र है व्याकरण सूत्र, आठ अध्याय, अष्टानाम अध्याय नाम समाहार अष्टाध्यायी, आठ अध्याय, इसमें आठ अध्याय है चांदोग्य में, इसमें बहुत सुंदर सुंदर है। ये तो तत्वमसि में महावाक्य उपदेश हुआ नौ बार, उसके पहले उपासना, प्राण उपासना, संवर्ग उपासना, वैश्वान रूपा विद्या और उपकुशल विद्या, सत्य काम, बहुत सुंदर विद्या है, बहुत आख्यायिका है। उपासना सेवा का क्या फल है, किस प्रकार ख्याली सेवा करके ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, कैसे गुरु की आज्ञा पालन करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, कैसे बड़े बड़े विद्वान होने के बाद भी जाते थे शिष्यत्व ने किसके पास, बड़े बड़े ब्राह्मण ज्ञानी उपासना करते हैं किस विद्या प्राप्ति के लिए, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो क्षत्रिय के पास भी जाते हैं, पुत्र गया किसके पास, पुत्र राजा का प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाया, पुत्र आकर पिता से कहते, पिता कहते चलो उनके पास हम जाएंगे शिष्यत्व में रहेंगे, पुत्र नाराज होकर कहता मैं राजा का मुख नहीं देखना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा, पिता जाते हैं। जहां पुत्र राज समय उपस्थित होकर के आया, पिता उसको उपदेश किए थे, पिता जाकर शिष्य बनते राजा के पास विद्या ग्रहण प्राप्ति के लिए। और इसमें आया नारद सनत कुमार संवाद आएगा, नारद बड़े देवर्षि नारद है, शास्त्र के ज्ञान बहुत है, जितने का ज्ञान है इतने का शास्त्र का नाम भी हमको तो याद नहीं, नाम रखना भी कठिन है, इसमें आएगा। विद्या तो अलग है, खाली नाम भी याद रखना कठिन, इतने ज्ञान उनके पास शास्त्र ज्ञान, कहते इतने ज्ञान होने के बाद भी मैं सोहम सोचामी शोक में हूं, तो भगवान मुझे पार उतारिए, सनत कुमार के पास जाते हैं, सनत कुमार उनको उपदेश करते, भूम विद्या यो वही भूमा तुखम सोमान, भूम विद्या का उपदेश इसमें। उसके बाद ज्ञान में, ज्ञान होने में भ्रम भी हो सकता है, होता है ऐसे बहुत लोग, थोड़े कुछ श्रवण करने के बाद उनको लगता है कि हमको ज्ञान हो गया, समझ गए हमें तो ब्रह्म और क्या है, ज्ञान हो गया। ऐसे कुछ लोग गुरु बनकर उपदेश करते तो देखो तुमको यही क्या ब्रह्म है, यही गुप्त है, किसको नहीं बताना, यही तो ये ज्ञान, तुम ब्रह्म है, तत् तुम असी, तत् का था ब्रह्म, तुम का तो तुम, असी का तो हो, तुम ब्रह्म हो, समझ आ गया ना, बोलो क्या तीन पद है समझे, तत्वसी तुम ब्रह्म हो, समझ मैं ब्रह्म, इसमें विचार है बड़ा कठिन है, शब्दार्थ तो समझ आ गया, वाक्यार्थ बोध नहीं होता है, लगता है बोध हो गया, बहुत समझदार में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले में भी, बहुत पढ़ाने प्रवचन करने वाले में भी भ्रम हो जाता है, ज्ञान हो गया। और ज्ञानित्व का ब्रह्म जितने को होता है, ज्ञान जितने को होता है, ज्ञानित्व का ब्रह्म उससे अधिक को होता है। कितने बार ब्रह्म होता है, कोई महापुरुष के पास जाकर कहा लगता है कि हमको ज्ञान हो गया, उन्होंने महापुरुष ने कहा इसे भ्रम तुमको और बार बार होगा, ये तो अभी पहली बार है, इसे कितने बार भ्रम होगा, मतलब ऐसे होता है कभी लग जाता है हो गया, ऐसे कि महापुरुष ने कहा हाँ हमको भी से लगता था पहले पहले तो क्या थोड़े श्रमण क्या लगता हमको ज्ञान हो गया, फिर बाद में शांति नहीं मिलती। तो इंद्र विरोचना गए प्रजापति के पास, विरोचना का तो भ्रम हो गया, इंद्र को भी भ्रम हो गया, तीन बार वापस जाने के बाद एक से एक वर्ष के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में कहेंगे जो किस प्रकार भ्रांति होती ब्रह्म ज्ञान में, और कुछ लोग आरोप कर लेते हमको ज्ञान हो गया, भ्रांति तो अलग है, और कुछ जानते हैं ज्ञान नहीं हुआ किंतु लोगों के सामने कहेंगे हमको ज्ञान हो गया, हम साक्षात्कार करते, ये भी समझ चलता है। तो ये सब ये कोई प्रारंभ आजकल के नहीं, ये अनादिकाल से है, क्योंकि अनादिकाल से जब से प्रारंभ हुआ सृष्टि, देवासुर संग्राम तब से चल रहा है और अभी चल रहा है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं, सावधान रहना पड़ता है अपने कल्याण के लिए, स्वयं अपना उद्धर आत्मना आत्मान अपने कल्याण करे। पहले कर्मकांड में कर्म बहुत कहे गए, कर्म में तीन प्रकार गति कही गई, जो भीत तो कर्म करेंगे कामना से करते कर्म, जो सकाम कर्म करते कर्मणा पितृलोक, दक्षिणान मार्ग से जाएंगे पितृलोक प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति होती है, शीघ्र फिर वापस आ जाते हैं। विद्या देवलोक, उपासना करेंगे तो देवलोक ब्रह्मलोक तक प्राप्ति है। उपासना कर्म के साथ मिला करके उपासना करने से कुछ केवल उपासना से ब्रह्म लोग तक उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। ये दक्षिणायन उत्तरायण दो मार्ग। और जो कर्म नहीं करते हैं, निषिद्ध कर्म तो करते ही है, उनकी अधोगति होती है, नीचे नरक जाते, कीड़े मकोड़े आदि बनते, त्रियज उनको प्राप्त करते, निषिद्ध कर्म करेंगे तो। और कोई उस बीच में मनुष्य में आ गया, वो संसार गति है। तीन कर्म उपासना का फल लोग हिरण्यगर्भ प्राप्ति तक हो तो फल संसार के अंतर्गत है। सांसारिक फल प्राप्ति के लिए कर्म उपासना सब है, किंतु कृतार्थता तभी नहीं होती है ज्ञान के बिना। तो ज्ञान के लिए आगे पहले कहेंगे, ज्ञान कहने के पहले उपासना कहते। जो उपासना वह भी बताया, स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति के लिए है, ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति के लिए, वही उपासना वही कर्म यदि निष्काम होकर करे परमात्मा साक्षात्कार फल कहे, परमात्मा साक्षात्कार का साधन। इसलिए ये उपासना पहले कहते हैं। जो उपासना पहले करके बिल्कुल दो प्रकार साधक वेदांत श्रवण करने के लिए, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। कृता उपास्ति ये न सकृत उपास्ति, जिसने उपासना कर ली वो कृतोपास्ति, जिसे नहीं क्या उसको अकृत उपास्ति कहेंगे। अर्थात आचार्य भगवत्पाद भक्ति का खंडन करते, द्वैत का खंडन करते, इसे लोग द्वैतवादी लोग अज्ञानी लोग भ्रांति फैलाते, ऐसा नहीं। उपासना करके जो इष्ट देवता का साक्षात्कार कर ले, कृतोपास्ति को उत्तम साधक श्रेष्ठ साधक वेदांत श्रवण के लिए माना गया। जिसने उपासना कर ली, जिसने उपासना करने का कहने से क्या होगा, इसी जन्म में हो, पूर्व अनादिकाल से कितने करोड़ों जन्म हो गया सबका, सबने उपासना की, किंतु उपासना की करके मानेंगे किसको, ये याद तो पहले भी हमारे याद है, आप पहले से भी करते थे, अभी आगे से नहीं करना चाहिए बीच में। जिसने उपासना कर ली का अर्थ क्या है, थोड़ी बहुत उपासना किसने नहीं की, इसी जन्म में नहीं किया तो पहले नहीं किया, सारे कर्म उपासना सब ने बहुत बहुत किया है। नहीं करने पर ये वेदांत श्रवण श्रवणायापि बहुबीर यो न लभ्य, सरल से प्राप्त नहीं होता है। उपासना बहुत की किंतु फिर भी कृतोपास्ति किसको कहेंगे, यदि कहेंगे भोजन का समय आया, जिसने भोजन नहीं किया आ जाओ, कोई एक दो बिस्कुट चाय के साथ खाया, कहेगा भोजन मैंने कर लिया, नहीं खाया, हम भी नहीं खाया, तो तुम्हें बिस्कुट खाया करके भोजन हो गया, नहीं हुआ। इसी प्रकार समझना, जब पेट भर भोजन नहीं हुआ तब तो कोई नहीं कहता भोजन कर लिया, बाकी है तो क्या गया भोजन, अभी आधा थोड़ा रह गया। यदि कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज अभाव हो गया, नहीं आया, क्या कहेंगे, मैं आधा पेट रह गया, भूखा रह गया, एक रोटी खाने की इच्छा नहीं खा पाए तो क्या कहेंगे, आधा पेट हो गया, भूखा रह गया। तो जिस प्रकार भोजन कर लिया मतलब तृप्त हो गया, उसके बाद देने पर नहीं खाएगा। इसी प्रकार उपासना कर ली का अर्थ क्या है, उपासना करके उपासना का फल प्राप्त हो गया, इष्ट देवता का साक्षात्कार कर लिया, तो उसको कहें कृतोपास्ति। अब थोड़े बहुत उपासना कर लिया कहें कृतोपास्ति, नहीं, उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाए उसको तो उपदेश सामान्य वेदांत उपदेश से ज्ञान हो जाएगा। योग मार्ग में भी निर्विकल्प समाधि जिसने प्राप्त कर ली, बहुत विघ्न है उसमें, निर्विकल्प समाधि को जाने के लिए बहुत विघ्न है, कुछ थोड़ा सिद्धि आदि मिल जाने पर उसी में फंस जाते हैं, बड़े माया का ये चक्कर है, मम माया दूरत्य, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। जब निर्विकल्प समाधि कोई पहुंच गया उसको भी महावाक्य उपदेश से ज्ञान हो जाएगा। ऐसे वो साधक कम है, दुर्लभ है। और बाकी जो साधक कृतोपास्ति नहीं, उनको उपासना करना होता है, करनी चाहिए। तो वेदांत श्रवण करने के लिए तो भी पहले उपासना कराते हैं, जिसे पहले उपासना कहेंगे। इसमें तो कर्म जो पहले करता था, कर्म को त्याग करके खाली उपासना करना ये भी कठिन। आजकल शास्त्रीय वैदिक कर्म नहीं करने से वो नहीं जानते, किंतु किसी भी कर्म कोई करता है तो पूरा कर्म छोड़ करके उपासना करे, भक्ति करके उन्हें बैठ जाए, जप कर ले, ध्यान लगा दे, लगातार, बड़ा कठिन है। इसलिए कर्म के साथ साथ कुछ उपासना और कुछ समय करे। यहां भी इस प्रकार वैदिक कर्म में संबद्ध कुछ उपासना, कर्मांग संबंधी उपासना कहेंगे। उपासना कह करके किस प्रकार मन एकाग्र करने के लिए किस तरीका से उपासना, उत्कृष्ट उपासना, जो प्रतीक उपासना प्रसिद्ध है, मूर्ति में जो पूजा करते उसको कहते प्रतीक उपासना। इसमें भी प्रतीक उपासना कहेंगे, किंतु प्रतीक उपासना में वो बाह्य आलम्बन के बिना ये मानसिक, जिस प्रकार भी कहा बाह्य पूजा की अपेक्षा मानस पूजा उत्कृष्ट है, इसी प्रकार आलम्बन बाह्य की अपेक्षा आंतर आलम्बन। जब ध्यान करते हैं, पहले भी साधक को हम कहते हैं भी किसी भी साधक ध्यान करेंगे तो कहेंगे बाह्य मूर्ति आदि में ध्यान करो, मूर्ति आदि में ध्यान करने के बाद थोड़े ध्यान कर सके सामर्थ्य आ जाए, फिर आंख बंद कर विचार करे मेरे हृदय कमले, हृदय कमले परमात्मा ऐसे बैठे सामने करके, ऐसे करके उनका चिंतन करे ध्यान करे। जब बाहर भी ध्यान करने के लिए असमर्थ है उसको हृदय कमले चिंतन कर से कहां करेगा, इसे बाह्य आलम्बन पहले कहते हैं, उसके बाद अंतर उपासना। तो यहां पहले उपासना आरंभ है, ओंकार उपासना सबसे प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ उपासना ये पहले प्रारंभ होता है।